उसी हवेली के दूसरे सिरे पर एक अलग कमरे में माहौल बिल्कुल अलग था। यहाँ कोई पीली रोशनी नहीं थी, बल्कि एक सादा सा कमरा था। स्टडी टेबल, लकड़ी की कुर्सी, किताबों का ढेर और टेबल लैंप की सफ़ेद रोशनी। घड़ी की सुइयां यहाँ भी चल रही थी, लेकिन टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। आर्यन स्टडी टेबल के सामने कुर्सी पर सीधा बैठा था, पीठ हल्की सी झुकी हुई, कोहनियाँ टेबल पर टिकी, एक हाथ में पेन और दूसरे में खुली हुई किताब। किताब के पन्नों पर अंडरलाइन, किनारों पर लिखे छोटे छोटे नोट्स, वो पूरी कोशिश कर रहा था कि दिमाग को इधर उधर न जाने दे। चेहरे पर तनाव साफ था, भौहें सिकुड़ी हुई, आंखें लाइन पर टिकी, लेकिन पढ़ा हुआ दिमाग के अंदर ठीक से बैठ नहीं रहा था। कमरे में अदिति लगातार टहल रही थी, कभी खिड़की तक जाती, कभी अलमारी के पास रुकती, कभी बिस्तर के किनारे बैठती, फिर उठकर चलने लगती। उसके हाथ में भी किताब थी, लेकिन वो खुली कम और बंद ज्यादा हो रही थी। पन्ने पलटने की आवाज़ नहीं, बस बेचैनी। अचानक वो रुक गई। आर्यन? उसकी आवाज़ में हल्की सी घबराहट थी। आर्यन ने नज़र किताब से हटाए बिना कहा, मुझे बहुत चिंता हो रही है, वो बोली। कल का एग्ज़ाम, पता नहीं कुछ याद भी रहेगा या नहीं। आर्यन ने गहरी सांस ली, पेन टेबल पर रखा और कुर्सी पर थोड़ा पीछे टिक गया। अदिति, उसने शांत लेकिन समझाने वाले लहजे में कहा, चिंता मत करो, पढ़ाई करो, चिंता से कोई पास नहीं होता। फिर हल्की मुस्कान के साथ जोड़ा, पढ़ाई करने से पास हो जाओगी मेरी जान। अदिति ने उसकी तरफ देखा, वो वहीं खड़ी रही एक पल के लिए, फिर अचानक आगे बढ़ी और अगले ही पल वो सीधे उसके पैरों के पास जमीन पर बैठ गई। आर्यन चौंक गया। अरे, उसने कहा, ये सब क्या है? अदिति उसके सामने जमीन पर बैठी थी, उसके दोनों घुटने मुड़े हुए, पैर जरा से खुले हुए और आर्यन के पैरों के बीच की जगह में वो आराम से बैठ गई। उसका चेहरा ठीक आर्यन के सामने था, बस थोड़ा नीचे। आर्यन कुर्सी पर, अदिति नीचे, लेकिन नज़रें बिल्कुल आमने सामने। आर्यन ने तुरंत किताब उठाने की कोशिश की। उठो यार, उसने कहा, पढ़ने दो, टाइम बहुत कम है। अदिति ने किताब की ओर नहीं देखा, वो बस उसे देखती रही। पता नहीं क्यों, उसने धीरे से कहा, जब मुझे बहुत स्ट्रेस होता है ना, तो मुझे तुम्हें प्यार करने को जी चाहता है। आर्यन का हाथ किताब पर ही रुक गया। उसने हल्की सी झुंझलाहट छुपाते हुए कहा, और इससे स्ट्रेस खत्म हो जाएगा? अदिति ने कंधे उचकाए, पता नहीं। फिर एक शरारती सी मुस्कान, लेकिन मज़ा तो आएगा। आर्यन ने सिर झटका। अदिति, तुम पागल हो, उसने किताब बंद करते हुए कहा, खुद भी फेल होने वाली हो और अब मैं भी। फिर नाटकीय सा चेहरा बनाकर बोला, मैं फेल हो गया ना तो पापा मेरी जान ले लेंगे, समझी? अदिति हंसी नहीं, वो अब भी वहीं बैठी रही। उसने अपने दोनों हाथ जमीन पर टिकाए और थोड़ा और पास सरक आई, अब उनके बीच की दूरी और कम हो गई थी। तुम हमेशा ऐसा क्यों बोलते हो, उसने कहा, जैसे सब कुछ बहुत डरावना है। आर्यन ने नज़रें फिर से किताब पर डालने की कोशिश की, लेकिन अब शब्द दिख ही नहीं रहे थे। क्योंकि सच में डरावना है, उसने कहा, कल एग्जाम है। अदिति ने धीरे से उसके घुटनों पर हाथ रख दिए, बस रखा, कोई दबाव नहीं, कोई हरकत नहीं। आर्यन की सांस सरासी बदल गई। अदिति, उसने चेतावनी भरे लहजे में कहा। वो मासूम सी बनी। ये सब मत करो, उसने कहा, मेरा दिमाग वैसे ही भटका हुआ है। अदिति ने सिल हल्का सा तिरछा किया। तो मत भटको, फिर बहुत आराम से बोली, बस मुझे देखो। आर्यन ने किताब आखिरकार पूरी तरह बंद कर दी, पेन टेबल पर रख दिया। तुम जानबूझ कर रही हो, उसने कहा। हाँ, अदिति ने बिना झिझक मान लिया, क्योंकि तुम बहुत टेंशन में हो। वो थोड़ी सी सीधी बैठ गई, अब उसका चेहरा और पास था। आर्यन ने कुर्सी की पीठ से टेक हटाई, वो अब आगे झुका हुआ था अनजाने में। अदिति, उसकी आवाज़ अब उतनी सख्त नहीं थी। अदिति ने उसकी ठुड्डी की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन छुआ नहीं, बस हवा में रुका, जैसे पूछ रही हो। आर्यन ने उसकी कलाई हल्के से पकड़ ली। बस, उसने कहा, यहीं रुको। अदिति की आंखों में वही शरारत थी, लेकिन अब उसमें नरमी भी घुल गई थी। ठीक है, उसने धीमे से कहा। वो वहीं बैठी रही, आर्यन भी वहीं झुका रहा। कमरे में फिर से टिक टिक सुनाई देने लगी, लैंप की रोशनी स्थिर थी। दोनों के बीच अब पढ़ाई नहीं थी, बस नज़दीकी थी जो धीरे धीरे हावी हो रही थी। आर्यन ने गहरी सांस ली। अगर अभी नहीं रुके, उसने कहा, तो सच में कुछ याद नहीं रहेगा। अदिति मुस्कुराई। तो कल याद रखने की कोशिश करेंगे, उसने कहा। आर्यन ने आंखें बंद की, बस एक पल के लिए, फिर खोली, और वही पल था जहां पढ़ाई हार रही थी और दिल जीतने लगा था। कमरे में कुछ पल ऐसे बीते जैसे समय ने रफ्तार कम कर दी हो। आर्यन अब भी कुर्सी पर आगे झुका हुआ था, अदिति जमीन पर बैठी थी उसके बिल्कुल सामने। दोनों की नजरें एक दूसरे से हटी नहीं थी, पढ़ाई, किताबें, एग्जाम सब जैसे पीछे छूट गया था। तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, अदिति ने धीमे से कहा। और तुम बहुत कम, आर्यन ने जवाब दिया, लेकिन इस बार आवाज में शिकायत नहीं थी। अदिति हल्की सी मुस्कुराई, शायद इसलिए हम साथ ठीक लगते हैं। आर्यन कुछ नहीं बोला, उसने बस उसका चेहरा देखा, थोड़ा थका हुआ, थोड़ा घबराया हुआ और बहुत अपना। उसके हाथ अब भी अदिति की कलाई पर थे, लेकिन पकड़ ढीली पड़ चुकी थी। अदिति ने धीरे से अपना हाथ उसकी पकड़ से निकाला और दोनों हथेलियां उसके घुटनों पर रख दी। आर्यन, उसका नाम इस बार अलग तरह से निकला, न शिकायत न मजाक। आर्यन की सांस गहरी हो गई। क्या? उसने पूछा। अदिति बिना कुछ कहे जरा सी और पास आई। अब उनका चेहरा बहुत करीब था, इतनी करीब कि आर्यन उसकी सांसें महसूस कर पा रहा था। बस ऐसे ही, उसने कहा। आर्यन ने एक पल तक खुद को रोके रखा, फिर उसने कुर्सी से उठकर जमीन पर ही उसके सामने बैठना ठीक समझा। अब दोनों एक ही स्तर पर थे, आमने सामने। तुम जानती हो, उसने कहा, तुम ऐसे करती हो तो मेरा दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। अदिति हंसती। तो अच्छा है ना, उसने कहा, थोड़ी देर दिमाग को छुट्टी मिल जाए। आर्यन ने सिर हिलाया, जैसे हार मान रहा हो। उसने धीरे से दोनों हाथ अदिति के चेहरे पर रखे। कोई जल्दी नहीं थी, कोई झटका नहीं, बस सुकून। अदिति की आंखें अपने आप बंद हो गईं। आर्यन ने माथा उसके माथे से टिका दिया। अगर कल फेल हो गए, उसने आधे मजाक में कहा, तो जिम्मेदार तुम हो। अदिति ने बिना आंखें खोले कहा, तो साथ में फेल होंगे। और उसी पल आर्यन ने और इंतजार नहीं किया। उसका चुंबन सीधा, सच्चा और पूरा था। न कोई दिखावा, न कोई बनावट, बस वो सब जो दिन भर रोका गया था। अदिति ने भी उसी गहराई से जवाब दिया। उसके हाथ अपने आप आर्यन के कंधों तक पहुंच गए, जैसे कह रहे हो, रुको मत। कमरे की हवा बदल गई। तनाव, डर, एग्जाम, सब कुछ जैसे पीछे रह गया। कुछ पर बाद आर्यन ने खुद को थोड़ा पीछे खींचा। उसकी पेशानी अदिति की पेशानी से लगी रही। बस, उसने कहा, इतना काफी है अभी। अदिति ने आंखें खोली। उसकी मुस्कान में अब सुकून था। अब पढ़ोगे? उसने पूछा। आर्यन ने गहरी सांस ली। हाँ, उसने कहा, अब शायद सच में पढ़ पाऊं। अदिति उठी, किताब उठाई और बेड के किनारे बैठ गई। आर्यन वापस कुर्सी पर बैठा। कमरे में फिर से पढ़ाई लौट आई थी, लेकिन अब बिना डर के, और उस चुंबन की गर्मी अब भी दोनों के साथ थी।